अथवा कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी कुंज बिहार जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गिरिवर धारी यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम 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 हरि हरे हरे कृष्णा Krishna Krishna Hari 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 Rama Hari Rama 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 Hari Hari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hari 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 Rama Hari Rama 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 Hari Hari Hare Krishna 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 Hari 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 Rama Hari Rama 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 Hari Hari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hari Hari Hare Rama Hare Rama 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 Hari Hari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hari Hari Hare Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hari Hari Hare Rama Hare Rama 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 Hari Hari Hare Hare Krishna 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 Hari Hari Hare Rama Hare Rama Rama Hari 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 Krishna Hari Krishna 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 Hari 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 Rama Hari Rama 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 Hari Hari Krishna Krishna Hari 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 Rama Hari Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hari Hari Hare Rama Hare Rama 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 Hari Hari Krishna Hare Krishna 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 Hari Hari Hare Rama Hare Rama Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hari 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 Rama Hari Rama 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 Hari Hari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hari Hari Hare Rama Hare Rama 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 Hari Hari Hare Krishna 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 Hari Hari Hare Rama Hare Rama 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 Hari Hari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा वृंदावन बिहारी राधा वृंदावन बिहारी राधे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे नितई गौरंगो नितई गौरंगो नितई गौरंगो गौर हरे जय सच्चिनंदन गौर हरे नदिया बिहारी गौर हरे पतित पावन गौर हरि जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव
हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्कंद पांच अध्याय एक श्लोक क्रमांक 24 बोर्डवर्ती लिखा है। अथ च दुहितर प्रजापते विश्वकर्मानुपेमे बहिष्मति नाम दुहितर प्रजापते विश्वकर्मानुपेमे बहिष्मति नाम तस्यामुह वाव आत्मजानात्म समान शीलगुण कर्म रूप वीर्य उदाहरण दश आत्मजानात्म समान शीलगुण कर्म रूप वीर्य भावयाम भावयाम व भुवव कन्याच यवीय सीमु ऊर्जस्वती नाम अथ च दुहितर प्रजापते विश्वकर्मानुपेमे बहिर्ष्मति नाम विश्वकर्मानुपेमे तस्यामुह वाव आत्मजानात्म समान शीलगुण कर्म रूप वीर्यो उदाहरण दश आत्मजानात्म समान शीलगुण कर्म रूप वीर्य उदाहरण दश भावयाम वभुव कन्या च ययैव सीम ऊर्जस्वती नाम अथ च दुहितर प्रजापते विश्वकर्मानुपेमि बरिष्मति नाम। तस्याम् हवाव आत्म जानात्म समान शिलगुण कर्म रूप वीर्यो दारंदश। शिलगुण कर्म रूप वीर्य अंदश भावयाम वभुव कन्या च या विया सीमा ऊर्जस्वती नाम। अथ च दुहितर प्रजापते विश्वकर्मानुपेमे बहिर्ष्मति नाम। दश तस्याह वाव आत्मजानात्म समान शिलगुण कर्म रूप वीर्यान् उदारं दश। भावयाम बभुव कन्या जय वीयसी मूर्जस्वती नाम। अनुवाद। तदनंतर महाराज प्रियव्रत ने प्रजापति विश्वकर्मा की कन्या बहिर्ष्मति से विवाह किया। उससे उन्हें 10 पुत्र प्राप्त हुए, जो सुंदरता, चरित्र, उदारता तथा अन्य गुणों में उन्हीं के समतुल्य थे। उनकी एक पुत्री भी हुई जो सबसे छोटी थी, उनका नाम ऊर्जस्वती था। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। महाराज प्रियव्रत ने ब्रह्मा का आदेश पालन करने हेतु न केवल राज्यभार स्वीकार किया, वरन प्रजापतियों में से एक प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री से विवाह भी किया। चूंकि महाराज प्रियव्रत दिव्य ज्ञान में निष्णात थे, अतः वे चाहते तो घर लौटकर ब्रह्मचारी रहते हुए शासन भार संभालते, किंतु गृहस्थाश्रम में आकर उन्होंने पत्नी भी स्वीकार की। सिद्धांत यह है कि जो गृहस्थ बन जाता है उसे उस आश्रम में पूर्ण रूप से रहना चाहिए, जिसका अर्थ यह है कि वह अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ शांतिपूर्वक रहे। जब चैतन्य महाप्रभु की प्रथम पत्नी का देहांत हो गया तो उनकी माता ने उनसे दूसरा विवाह करने का अनुरोध किया। उस समय उनकी आयु 20 वर्ष की थी और 24 वर्ष की आयु में वे संन्यास ग्रहण करने जा रहे थे, तो भी उन्होंने अपनी माँ के अनुरोध पर विवाह कर लिया। उन्होंने अपनी माँ से कहा, जब तक मैं गृहस्थाश्रम में हूँ मेरी पत्नी होनी चाहिए, क्योंकि गृहस्थ जीवन का अर्थ घर में रहना नहीं होता, वास्तविक गृहस्थ जीवन का अर्थ है पत्नी के साथ घर में रहना। इस श्लोक में 3 शब्द वह वाव महत्व के है, उनका प्रयोग आश्चर्य प्रकट करने के लिए हुआ है। प्रियव्रत महाराज ने त्यागमय जीवन का व्रत ले रखा था, किंतु पत्नी स्वीकार करके पुत्र उत्पन्न करने से त्याग मार्ग का कोई संबंध नहीं है। यह कार्य तो भोग मार्ग को बताते हैं। अतः यह विस्मय की बात थी कि विरक्ति के मार्ग के अनुगामी प्रियव्रत महाराज ने अब भोग मार्ग को स्वीकार किया था। यदा कदा मेरी आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि सन्यासी होते हुए भी मैं अपने शिष्यों के विवाह उत्सव में सम्मिलित हुआ हूँ। यहाँ पर बता दिया जाए कि चूंकि हमने कृष्ण भावनामृत संघ प्रारंभ किया है और मानव समाज में आदर्श विवाह संपन्न होना चाहिए, इसलिए आदर्श समाज की स्थापना करने के लिए हमें इसके कुछ सदस्यों का विवाह करवाने में भाग लेना ही चाहिए, भले ही हमने सन्यासी क्यों न स्वीकार कर रखा हो। यह उन व्यक्तियों को आश्चर्यकारक प्रतीत होता है जिनकी रुचि चारों सामाजिक आश्रमों में तथा चारों आध्यात्मिक आश्रमों की दीव प्रणाली जैसे दैवी वर्णाश्रम है स्थापित करने में नहीं है, तो भी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने दैवी वर्णाश्रम की पुनर्स्थापना करनी चाहिए थी। दैवी वर्णाश्रम में जन्म से सामाजिक स्तर नहीं स्वीकार किया जाता, क्योंकि श्रीमद् भगवद्गीता में कहा गया है कि इनके निर्धारक तत्वगुण तथा कर्म है। कृष्ण भावनामृत के लिए उपयुक्त समाज को बनाए रखने के उद्देश्य से इसी दैवी वर्णाश्रम की सारे विश्व में पुनर्स्थापना की जानी चाहिए। अल्पज्ञ आलोचकों के लिए यह आश्चर्यजनक हो सकता है, किंतु कृष्ण भावनामृत संघ के कार्यों में यह एक कार्यों में से यह एक है। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांच श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्री विशाखान्वितांच। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातधीष्टारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत कथाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबसे पहले सभी सीनियर भक्तों का मैं ब्लेसिंग्स चाहता हूँ, आशीर्वाद, तो कृपा करके दीजिए ताकि मैं इस विषय में कुछ चर्चा कर सकूँ। तो सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हम आज चार पॉइंट पे चर्चा करेंगे। तो पहला है इंद्रिय ग्रस्त जीवन में क्या दोष है, और दूसरा है गुरु की आज्ञा पालन, और तीसरा है शुद्ध भक्ति, और चौथा है भक्ति में दो प्रकार के विघ्न जो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया है वो क्या है। इस संबंध में हम इस प्रियव्रत महाराज की कथा के आधार पर चर्चा करेंगे। तो पहले तो हम चर्चा करेंगे कि भक्ति में क्या दोष है, गृहस्थ जीवन में क्या दोष है। तो उसके फायदे भी है, लेकिन आज का जो विषय है इसलिए ये थोड़ा गृहस्थ जीवन में क्या दोष है ये समझना आवश्यक है। तो पहले तो गृहस्थ जीवन में जो भी कार्य होते हैं सब इंद्रिय तृप्ति की प्रेरणा से होते हैं, तो ये क्या है, दोष है। फिर मन में क्या होता है, इंद्रिय तृप्ति की आशा होती है, और फिर हमारे इंद्रियों हम लगाते कठोर मेहनत करने के लिए। जो इधर सीनियर ग्रस्त बैठे हैं श्रीमान आदिकेश्वर प्रभु, और मतलब उनको पता होगा कि सांसारिक जीवन जो होता है कितना कठोर होता है ना। तो ब्रह्मचारी है उनको तो पता नहीं होगा, लेकिन ग्रस्तों को अच्छी तरह से पता है कि सांसारिक जीवन कितना कठोर होता है, और इंद्रियां जो होती है कठोर मेहनत करने के लिए लगाना पड़ता है, क्योंकि मन में इंद्रिय तृप्ति की प्रेरणा से ही सब कार्य होता है। और गृहस्थ जीवन में सकाम कर्म का फल मिलता है, और सकाम कर्म का फल मिलने से मनुष्य क्या होता है, फंसता चला जाता है ना, फंसता ही चला जाता है। जैसे कि प्रहलाद महाराज ने अंधकूप बताया है इसको, और उस अंधकूप में सकाम कर्म का फल मिलता है, और उस आसक्ति की वजह से मनुष्य है ना तो फंसता ही जाता है उसमें। सकाम कर्म का फल मिलता है इसलिए बद्ध होता चला जाता है। तो त्रिगुणों से फिर गृहस्थी क्या होता है, मनुष्य बद्ध होते जाता है त्रिगुण तीन गुण के इससे। फिर और एक बात है कि हमारा एक भौतिक मृत्यु होता है ना, जो हमारा जो शरीर है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना, इसकी मृत्यु होती है, और एक आध्यात्मिक मृत्यु भी होता है हमारा। तो अगर हम कृष्ण भावना में प्रगति करके अगर हम हमारे मनुष्य जीवन का गोल जो है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त करना, उसको अगर हम प्राप्त नहीं करते तो फिर हमारा क्या होता है, आध्यात्मिक मृत्यु होता है। तो इसमें ये भी एक भय रहता है कि हमारा आध्यात्मिक मृत्यु ना हो जाए। तो फिर भी और गृहस्थ आश्रम में कितने हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, कर्तव्य होता है, अनेक प्रकार बिल भरना पड़ता है हमको, लाइट बिल, फ्लैट का हफ्ता, दूध का बिल आता है, फिर राशन आता है ना। फिर गवर्नमेंट को टैक्स भी भरना पड़ता है, अगर थोड़ा इनकम बढ़ गया तो क्या गवर्नमेंट को टैक्स भी भरना पड़ता है और इस्कॉन को डोनेशन भी देना पड़ता है ना सभी। तो इतना सब कार्य गृहस्थों को करना पड़ता है। और तो फिर व्यक्ति जो है ना निचोड़ जाता है पूरा है ना ग्रस्त जीवन में, क्योंकि थोड़ा इंद्रिय तृप्ति करते हैं लेकिन कितना हमको कष्ट झेलना पड़ता है ना। तो गवर्नमेंट का टैक्स भरो घर, और अगर ब्रह्मचारी कोई व्यक्ति रहता है तो उनका छह ही इंद्रिया है ना, हमारे पांच कर्म इंद्रिया और छठा मन। और अगर हम ग्रस्त हो जाते तो इंद्रिया कितने हो जाते, पत्नी की छह और कितने पुत्र है उनकी और इंद्रिया बढ़ जाते हैं। तो सभी इंद्रिया क्या करते हैं, वो उनका विषय का डिमांड करती है, और उनकी विषय की डिमांड की पूर्ति करने के लिए फिर हमको क्या करना पड़ता है, कठोर मेहनत करना पड़ता है। तो ये अनेक प्रकार के कर्तव्य होते हैं गृहस्थ आश्रम में, तो जिनको गृहस्थ को करना ही पड़ता है। और भौतिक इसमें क्या बोला है, इसको गृहस्थ आश्रम को भौतिक जो कार्य होता है ना उसका धगधगता अग्नि बोला है शास्त्र में, भौतिक कार्यों का धगधगता अग्नि। और सबसे आखिरी में स्वरूप विस्मृति होती है, स्वरूप विस्मृति मतलब हमारे गोलोक धाम में ना तो वैकुंठ में हमारा कोई तो एक स्थान है ना, उधर हम शाश्वत भगवान श्री कृष्ण के सेवक है, दास है, और गोलोक में हमारा एक शाश्वत स्वरूप है। और मनुष्य जीवन का गोल है कि उस स्वरूप को हम प्राप्त करें, उसको स्मरे हमको वो याद आए हमको, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करके भक्ति करके जो हमारा शाश्वत स्वरूप है ना उस स्वरूप को हम प्राप्त करें वो तो। और उसको स्मरण जब होएगा तभी प्राप्त होगा वो कि हम भगवान के घर में क्या है। और प्रभुपाद तो सिंपल भाषा में बोलते कि जीवेर स्वरूप है कृष्णर नित्य दास, तो वो भी है, हम भगवान श्री कृष्ण के दास है। तो वो जो स्वरूप है हमारा भगवान श्री कृष्ण के, हम दास है, तो इसकी क्या होती है, हमें विस्मृति हो जाती है। तो इतने सारे और भी है लेकिन इतने सारे मुझे याद आए तो मैंने ये तो इतना याद किया है, फायदे भी है, ऐसा नहीं कि फायदा नहीं है, लेकिन हम इस जो विषय है इसमें थोड़ा जो मतलब क्या ये है ना दोष है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इतने सारे दोष है, और ये जो अध्याय है ना तो ये क्वेश्चन से शुरू होता है परीक्षित महाराज से। जब ये परीक्षित प्रियव्रत महाराज की कथा सुखदेव गोस्वामी बताते हैं ना, तो बताते सुखदेव गोस्वामी महाराज की ये प्रियव्रत महाराज तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, कठोरता के साथ भक्ति के नियमों का पालन करते थे, वन में चले गए और पीछे तक देखा ही नहीं, और उसमें जो है ना भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में प्रेम प्राप्त हो गया उनको, उनको भक्ति का रस मिल रहा था उधर, और ना तो वो गृहस्थ आश्रम की तरफ देखना चाहते थे ना तो इंद्रिय तृप्ति करना चाहते थे, वो एकदम शुद्ध भक्त बन गए थे। और जब वो गंधमादन पर्वत पर चले गए तो भगवान श्री कृष्ण के जो शुद्ध भक्त है देवर्षि नारद मुनि, तो उनका संग उन्हें प्राप्त होगा, और सिर्फ संग ही प्राप्त नहीं हो गया, उनसे शिक्षा दीक्षा प्राप्त हुई उनको, और फिर गहरी भक्ति में चले गए थे वो, शुद्ध भक्त बन गए भगवान श्री कृष्ण के। और इतना सब होने के बाद अभी परीक्षित महाराज श्रवण करते हैं सुखदेव गोस्वामी के मुख से कि गृहस्थ आश्रम में चले गए है ना। और इस हम जो तात्पर्य जो हमने पढ़ा उसमें हमने सुना कि सिर्फ गृहस्थ आश्रम में चले गए ऐसा नहीं, उन्होंने पत्नी भी स्वीकार किया, पत्नी जो भरिष्मती नाम की पत्नी थी उनकी, और जो एक प्रजापति है ना विश्वकर्मा, तो उनकी पुत्री थी वो। तो विश्वकर्मा आपको हम सबको पता है कि स्वर्ग के सिविल इंजीनियर है वो, तो जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है वो कौन करता है, विश्वकर्मा करता है। और उनकी पत्नी से इनका विवाह भी हो गया, और सिर्फ विवाह भी हुआ ऐसा नहीं, 10 बच्चे भी हो गए, और एक ऊर्जस्वती नाम की पुत्री भी हुई उनको। तो इतना सब हो गया, तो ये विस्मय कारकृत्या देख रहे सुखदेव गोस्वामी की मुख की तरफ, और प्रश्न कर रहे कि ऐसा कैसे हो गया। तो ऐसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी इतना आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत जो व्यक्ति है ना वो गृहस्थ आश्रम में कैसे चले गए। तो ये प्रश्न से ये अध्याय शुरू होता है पहला श्लोक से। तो हमारा पहला जो पॉइंट था मेरा कि गृहस्थ आश्रम में क्या दोष है, उसका तो हमने चर्चा किया। तो मेरे तो चार पॉइंट है ना, तो प्रवचन के तो दूसरा क्या पॉइंट है कि गुरु की आज्ञा का पालन। तो ये दूसरा जो चर्चा का विषय है ना, तो अब यहां से शुरू होता है कि जब ये क्वेश्चन पूछा परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से, तो सुखदेव गोस्वामी अब जवाब दे रहे, उसका उत्तर दे रहे, बोल रहे कि उनके जो पिताजी थे मनु, तो ये जो परंपरा जो कथा है परिव्रत महाराज की, इस प्रकार है कि ध्रुव महाराज के पिता उत्तानपाद, और उत्तानपाद के जो बड़े भाई है ये है परिव्रत महाराज। ये परिव्रत महाराज जब थोड़े बड़े हो गए तो ये ब्रह्मचारी व्रत का पालन करने के लिए जंगल में चले गए, और पूरा जो राज्य था वो उत्तानपाद संभाल रहे थे। तो जब ये हम तात्पर्य कथा जब श्रवण करते हैं, ऐसा लगता है कि वो टाइम पे पूरा जो जगत है, सिर्फ पृथ्वी नहीं, अनेक प्रकार के जो ग्रह है, स्वर्ग लोक है, तो सब ग्रह का ये राजे थे, राजा थे, मुझे ऐसा नहीं कि सिर्फ पृथ्वी के ऊपर। तो सोच सकते हैं कि ये पहले जो मनु है ना, स्वयं भाई मनु, तो इनके पुत्र है ये प्रियव्रत महाराज। और ये स्वर्ग, अब ये जो विश्वकर्मा है, तो ये तो स्वर्ग के देवता है ना, और उनकी पत्नी के साथ ये उनकी सॉरी उनकी पुत्री के साथ ये विवाह, इन्होंने विवाह किया, ऐसा है हम सुनते हैं ना इधर। तो ये तब पूरे जगत का राज्य कारोबार जो शुरू में स्वयंभव मनु संभालते थे, अभी ये राज्य कारोबार किसको दिया, ये प्रिव्रत महाराज को दिया गया इधर। तो ये प्रश्न था उनका कि ये कैसे हो गया। फिर ये फिर जो उत्तानपाद से ध्रुव आए, फिर ऐसे परम नीचे उनके पुत्र के पुत्र करके नीचे जब कोई राज्य संभालने के लिए पात्र व्यक्ति नहीं है, प्रचेता तक ही आया, और प्रचेता के आगे कोई भी अच्छा व्यक्ति नहीं है राज्य संभालने के लिए, तो फिर मनु को इनके पास आना पड़ा, बड़े पुत्र के पास, जो अभी जंगल में थे गंधमादन पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। तो जब मनु आए और उन्होंने गृहस्थाश्रम स्वीकार करने के लिए इनको अनुरोध किया, तो उनको अच्छा नहीं लगा, ठीक नहीं लगा ये बात उनको, तो उन्होंने मना कर दिया गृहस्थाश्रम स्वीकारने के लिए प्रिव्रत महाराज ने। फिर मनु को ब्रह्मा के पास जाना पड़ा, और फिर ब्रह्मा अपना वाहन लेके, उनका हंस वाहन है ना, तो हंस वाहन से, तो ब्रह्मा के साथ में बड़े बड़े देवता थे, नारद मुनि थे, नारद मुनि तो इधर ही बैठे थे गंधमादन पर्वत पर, इंद्र थे, शिव जी थे, ऐसे बड़े बड़े जो देवता थे इधर आए थे इनके पास, इनके साथ ब्रह्मा जी के साथ में। और ब्रह्मा जी का जो हंस वाहन जब उतर गया गंधमादन के उधर, तो ब्रह्मा आए इधर, और फिर ये प्रिव्रत महाराज को आदेश दे रहे, उपदेश दे रहे, बोल रहे, अभी उपदेश क्या दे रहे ब्रह्मा, बोल रहे कि बेटा मैं इधर आया हूँ, इसलिए आया हूँ कि मैं अकेला आदेश देने के लिए नहीं आया इधर, ये भगवान श्री कृष्ण की इच्छा है, ये भगवान श्री कृष्ण का आदेश है कि आप ये राज्य कारबार संभालो। और जो भगवान का आदेश होता है ना, उसका उल्लंघन ना तो मैं करता हूँ ब्रह्मा, ना शिवजी कर सकते हैं, ना देवर्षि नारद कर सकते, ना इंद्र कर सकते। तो इतने बड़े बड़े देवता यमराज, ये अगर भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते, तो आप कैसे कर सकते हो, है ना। तो एक ब्रह्मा से लेके एक छोटा जीव चींटी, सबको भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करना ही पड़ता है। मतलब हमारे इसमें इतना दम नहीं है, ताकत नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का उल्लंघन कर सके हम, ना तो तपोबल से, ना से बहुत ज्यादा भक्ति करके, ना तब ना तो कोई बहुत बड़े पंडित बन के, किसी भी माध्यम से हम भले बद्ध जीवन में हो नहीं तो मुक्त हो, भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। और मैं भगवान कृष्ण की आज्ञा लेके आया हूँ, और हम सबको भी भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा गुरु परंपरा के द्वारा ही मिलती है ना। जब हमारे गुरु बोलते हैं ये आपको सेवा करना है, तो हमें क्या करना पड़ता है, करना ही पड़ता है, क्योंकि वो किसका आदेश होता है, भगवान कृष्ण का परंपरा के द्वारा आदेश मिलता है हमको, और हमको भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन हमें करना ही पड़ता है। अभी आप समझो ब्रह्मचर्य है, कोई भी होने दो, तो अगर आपके गुरु महाराज, कल्पना कीजिए आपके गुरु महाराज आके आपको बोले समझो कि कल से आप गृहस्थ आश्रम छोड़ दो और शादी करो और बच्चे पैदा करो, अगर ऐसा गुरु महाराज बोलेंगे तो आप क्या करेंगे प्रभु जी, क्या करेंगे? अगर आपके गुरु महाराज आपको बोले कि आप अभी ब्रह्माश्रम ग्रस्त छोड़ दो ब्रह्मचर्य आश्रम और ग्रस्त आश्रम स्वीकार करो, तो क्या करेंगे आप? ऑर्डर कर रहे गुरु महाराज आपको, समझो कल्पना कीजिए ऐसा, तो क्या करेंगे आप? आदेश का पालन करेंगे ना? अच्छा तो हाँ, तो इस तरह अगर ये देवर्षि नारद के गुरु कौन है? ब्रह्मा जी है ना, तो प्रियव्रत महाराज के गुरु कौन है? देवर्षि नारद है, और देवर्षि नारद के गुरु कौन है? ब्रह्मा है, और ब्रह्मा किसका आदेश लेके आए हैं? भगवान कृष्ण का आदेश लेके आए, तो इसलिए उन्होंने स्वीकार किया गृहस्थ आश्रम। वो तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, उनके हृदय में शुद्ध भक्ति थी, वो खचाखच भरा था भक्ति उसके हृदय में उनके, तो वो तो उनका खुद का इच्छा थोड़ा भी नहीं था गृहस्थ आश्रम स्वीकार करने का, तो फिर भी उन्होंने क्या किया? गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि हमें गुरु की आज्ञा का पालन करना ही पड़ता है। जैसे भगवद्गीता में हम श्रवण करते हैं ना, तो अर्जुन का इच्छा क्या था? युद्ध ना करे, जंगल जाए तो भिक्षा मांग के खाऊंगा लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा, है ना, इनको मार के मेरे गुरु है, पिता समान पितामह है, तो उनको तो मैं युद्ध करके मारूंगा नहीं, ऐसा बोल रहे थे ना अर्जुन, लेकिन भगवान ने क्या आदेश दिया? युद्ध करो। तो फिर पूरा जितना उनके साथ शक्ति है, जितना भी उनके पास कैपेबिलिटी है, उसके साथ फिर उन्होंने पूरा समर्पित होके युद्ध किया। तो फिर किसका आज्ञा का पालन किया अर्जुन ने? भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन किया ना। फिर हमारे जो प्रभुपाद जी भी थे ना, तो उनको भी उनके गुरु ने क्या आदेश दिया था कि जाओ पाश्चात्य देश में जाओ, अमेरिका जाओ, और क्या करो? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का प्रचार करो। क्यों? क्योंकि आपका इंग्लिश बहुत अच्छा है। तो देखो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कितने दूरदर्शी थे, तो उनको भविष्य में कहाँ होने वाला है ना, इसका पता पहले ही था, इसलिए उन्होंने पहले आदेश दिया था अपने शिष्य के द्वारा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती क्या करना चाहते थे? अभी आजकल कोई आर्किटेक्ट हो तो उनका भी ऐसा थोड़ा व्यू होता है ना, तो ये बिल्डिंग ऐसा 50 माले का है तो उसका विंडो ऐसा आएगा, वो इधर बैठ के कल्पना कर सकते हैं, है ना, बिल्डिंग कैसा आएगा आर्किटेक्ट, तो इसीलिए उनको आर्किटेक्ट बोला जाता है। उसी तरह हमारे जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती सबसे बड़े आर्किटेक्ट थे, तो उनको मालूम था कि भविष्य में क्या होने वाला है, इसलिए उन्होंने क्या दिया था आदेश? प्रभुपाद को पाश्चात्य जाके प्रचार करो। तो फिर प्रभुपाद ऐसा नहीं कि पाश्चात्य देश में जाने के पहले वो प्रचार नहीं कर रहे थे, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली, लेकिन जैसे ही वो पाश्चात्य देश में गए तो इतना सफलता प्राप्त होगी कि पूछो मत। तो क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि श्री प्रभुपाद ने अपने जो गुरु है ना उनके आदेश का पालन किया, इसलिए ऐसा हो गया, सफलता इतना प्राप्त हुई उनको। और हम भी अगर हमारे गुरु जो है ना उनका आदेश का पालन करते हैं और जो जो गुरु ने बोला वो सेवा करते हैं ना, तो वो हमें सफलता प्राप्त होते, तो हमारा भी आनंद इच्छा होता है, मैं ऐसा कीर्तन करूँगा, ऐसा प्रचार करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, हमारा खुद का भी बहुत इच्छा होता है। लेकिन हमारे वो इच्छा को बाजू रख के हमें किसकी आज्ञा का पालन करना है? भगवान कृष्ण की आज्ञा का पालन करना है। और वो कैसे करना है? परंपरा के द्वारा, जो हमारे गुरु है ना हमें आदेश देंगे तो उस आदेश से हमें पालन करना पड़ता है। जैसे महाभारत में भी हम श्रवण करते हैं ना, तो ये कर्ण का मृत्यु कैसे हुआ कि जब कर्ण हाथ में जब धनुष नहीं था उनके, जो रथ का जो चक्र है उसको निकाल रहे थे, और युद्ध का तो ये नियम है कि कोई जब निशस्त्र हो तो उसके ऊपर धनुष बाण नहीं चलाना चाहिए, ये तो नियम है ना शास्त्र का। अर्जुन खड़े थे अपने नियम का पालन करने के लिए, तो वो तो धर्म का पालन करते थे, युद्ध के नियमों का पालन करते थे, मैं नहीं मारूंगा बोल रहे थे कृष्ण को, लेकिन कृष्ण ने क्या बोला? मारो इसको, छोड़ो मत, भले युद्ध के नियम टूटने दो, युद्ध के नियम तुम। फिर अर्जुन ने क्या किया? बाकी सोचा नहीं, जब कोई गुरु आदेश देते ना कि किसी किसी शिष्यों को ऐसा लग सकता है कि मुझे जरा थोड़ा गुरु से ज़्यादा ज्ञान है ना, मैं इस आदेश का पालन नहीं करूँगा क्योंकि ये तो युद्ध के नियम तोड़ रहा हूँ मैं, है ना, तो अगर कृष्ण को कुछ मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं, नहीं तो मेरे गुरु को ज्यादा ज्ञान नहीं, मुझे ज्यादा ज्ञान है, ऐसा हमें लग सकता है किसी शिष्य को, आप तो बहुत ही ऐसा नहीं। तो फिर अर्जुन ने क्या किया, बाकी बाकी सोचा नहीं, कृष्ण बोल रहे तो मारो शूट। तो फिर ये युधिष्ठिर महाराज, जब द्रोणाचार्य का मृत्यु होने का था तो वो टाइम पे ये द्रोणाचार्य ने सबसे आखिर में किसको पूछा था कि मेरा अश्वत्थामा मर गया क्या है, यह है करके, क्योंकि उनको पता था कि युधिष्ठिर महाराज कभी झूठ नहीं बोलते, आज तक कभी झूठ नहीं बोला, पूरा जीवन में उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला है। अगर युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि मेरा बेटा जो है अश्वत्थामा मर गया है ना, तो मुझे उसके ऊपर पूरा विश्वास है कि मर गया। अगर युधिष्ठिर महाराज बोलते तो एक पत्थर की लकीर के समान है, वो कभी झूठ नहीं बोलते। तो अगर उन्होंने बोला है कि मेरा बेटा मर गया तो मेरा बेटा मर गया, ऐसा द्रोणाचार्य सोच रहे थे। और भगवान कृष्ण ने बोला उनको कि झूठ बोलो, इधर बोलो कि अश्वत्थामा मर गया करके। तो शास्त्र क्या बताता है कि झूठ कभी बोलना नहीं चाहिए, लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, बोलो झूठ उधर। तो युधिष्ठिर महाराज को ऐसा लगना नहीं चाहिए कि मुझे शास्त्र का ज्ञान है, कैसे मैं झूठ बोलूं, आज तक जिंदगी भर झूठ नहीं बोला है और भगवान बोल रहे मेरे को झूठ बोलो करके। तो फिर किसका आदेश का पालन किया उन्होंने, भगवान कृष्ण के आदेश का पालन किया और झूठ बोला उधर। तो फिर ये दुर्योधन का भी मृत्यु कैसे हुआ, तो दुर्योधन और भीम का गदा युद्ध चल रहा था, तो वो टाइम पे एक युद्ध का एक नियम है कि जंगा के ऊपर कमर के ऊपर गदा से प्रहार नहीं करना चाहिए, लेकिन भीम वो प्रहार नहीं कर रहा था क्योंकि युद्ध के नियम का पालन कर रहा था। लेकिन जब और आपको पता है कि दुर्योधन को अपनी माँ से, उनकी जो माँ थी गांधारी, तो जीवन भर उन्होंने तपस्या किया था, आंखों के ऊपर पट्टी बनी थी ना, और जब पट्टी खोली उन्होंने, पूरा तपस्या का जो फल जो है वो किसको दिया था, दुर्योधन को दिया था। और दुर्योधन को बोला था कि रात को क्या करो आप, मेरे सामने आ जाओ पूरे नग्न, मतलब कपड़ा नहीं शरीर पे पहनना, तो मैं क्या करूँगी आपकी दृष्टि आपके शरीर पे डालूंगी, तो आपका शरीर कैसे बने जाएगा, कवच के जैसा बनेगा, ना तो कोई आपको मार सकता है। तो जब जा रहे थे ये माँ के पास अपने, तो भगवान बीच में मिले और बोले ऐसा कैसे जाता है माँ के सामने, कम से कम कमर पे तो कुछ बांधो। तो उन्होंने क्या किया, एक केला पत्ता, केला का पत्ता लेके ऐसा जंगा के ऊपर लपेट लिया, और जब माँ ने पट्टी खोला और उनके शरीर के ऊपर जब उनकी दृष्टि पड़ी, तो पूरा शरीर उनका वज्र के जैसा बन गया, लेकिन वीक पोर्शन कौन सा था, जंगा का, क्योंकि उधर उन्होंने केले का पत्ता गए थे। और जब युद्ध चल रहा था इधर, भीम सोच रहा था कि जंगा के ऊपर कैसे प्रहार करूं, क्योंकि ये तो युद्ध के नियम के विरुद्ध है, कदा युद्ध में जंगा के ऊपर कमर के ऊपर तो प्रहार करते नहीं है, लेकिन भगवान बोले कि प्रहार करो, है ना। तो उधर भी क्या हो गया, युद्ध के नियम टूट गए, और भीम ने किसके, दुर्योधन को किधर प्रहार किया, जंगा के ऊपर। उनका व्रत, उन्होंने प्रतिज्ञा भी किया था कि उन्होंने दुर्योधन का जंगा मैं तोड़ दूंगा करके, वो दोनों है। तो उधर क्या हो गया, उन्होंने किसके आज्ञा का पालन किया, भगवान कृष्ण की आज्ञा। और कोई ऐसा सोच सकता है कि भगवान कृष्ण क्यों ऐसा गलत आदेश देते हैं, ऐसा भी कोई सोच सकता है, लेकिन भगवान कभी भी गलत आदेश नहीं देते, भगवान सही आदेश देते, लेकिन हम उतना, हमारा बुद्धि चलता नहीं, क्योंकि भगवान को तो धर्म की स्थापना करना है ना। तो इसलिए भगवान जो आदेश देते हैं वो क्या होता है, सही ही होता है, उसमें भी कोई गलती नहीं है। तो इधर हम सोच सकते हैं कि इतने सारे हमने दृष्टांत से चर्चा किया कि कैसे हमें गुरु की आज्ञा का जब हम पालन करते हैं ना, भगवान कृष्ण की आज्ञा हमें गुरु परंपरा से प्राप्त होता है, और उस आज्ञा का जब पालन होता है तो सफलता मतलब मिरेकल हो जाता है, इतनी सफलता हमें प्राप्त हो सकती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के भक्त कुछ भी कर सकते हैं, प्रभुपाद बोलते, जैसे कि पूर्ववर्त महाराज ने आगे बहुत ऐसे कार्य किए जो सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। तो भगवान श्री कृष्ण के भक्त भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, अपने गुरु की कृपा से कुछ भी कर सकता है, ऐसा उसके लिए कुछ भी पॉसिबल इम्पॉसिबल नहीं है, उसके लिए सब पॉसिबल है। तो ये हो गया हमारा चर्चा का दूसरा पॉइंट, हमें गुरु की आज्ञा का पालन करना ही पड़ता है। अभी तीसरा हमारा चर्चा का विषय है शुद्ध भक्ति, और वो भी हम इस जो पूर्वव्रत महाराज की कथा से हम श्रवण करेंगे, शुद्ध भक्ति क्या है। तो रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में शुद्ध भक्ति का डेफिनेशन बताते हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनवृत्तम अनुकुल्लेन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तम। तो शुद्ध भक्ति में क्या है कि हमें अन्य अभिलाषा कुछ भी नहीं करना चाहिए, हमें जो भी भगवान श्री कृष्ण की इच्छा है उसकी उनकी इच्छा हमें पूरा करना चाहिए, और हमारी जो भी इच्छा है हो नहीं करना चाहिए। हमारा खुद का भी इच्छा अनेक हो सकता है, तो पहले हमें किसकी इच्छा का पालन करना चाहिए, भगवान कृष्ण की इच्छा का हमें पालन करना चाहिए। देखो, हम जब भौतिक जगत में भी कोई अगर कोई नौकरी कर रहा है बाहर, कोई समझो कोई बड़े पोस्ट भी, तो भी उसको उसके मालिक का आदेश उसको पालन करना ही पड़ता है, मालिक के आदेश से हमें कार्य करना पड़ता है। तो इधर जब प्रियव्रत महाराज की हम कथा श्रवण करते हैं, तो ब्रह्मा जी आए थे प्रियव्रत महाराज के पास, प्रियव्रत महाराज गंधमादन पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, और ब्रह्मा बोल रहे थे कि आप गृहस्थ आश्रम स्वीकार करो, है ना, और ये स्वीकार करो, और ये किसकी किन की इच्छा है, भगवान कृष्ण की इच्छा है ना, तो उनकी इच्छा के हिसाब से आपको सेवा करना है। तो भले गृहस्थ आश्रम भी हो तो फिर भी वो किसकी इच्छा है, भगवान कृष्ण की इच्छा है। और श्रील प्रभुपाद भी जब अमेरिका गए थे, अमेरिका जाने के पहले प्रभुपाद किधर थे, वृंदावन में थे। और कोई भी व्यक्ति भक्त हम हमारी भक्ति में प्रगति करने के लिए हमारा जगह छोड़ के किधर जाते हैं, वृंदावन चले जाते हैं, कोई भी आध्यात्मिक स्थान या तो पंडरपुर जाते हैं, ऐसा कोई भी जो तीर्थ स्थान है वहाँ पे जाते हैं, ताकि उधर हमें क्या मिले, भक्तों का संग मिले, हमारे भक्ति में प्रेरणा मिले, हमारा आध्यात्मिक प्रगति हो। इसलिए हम हमारा गांव छोड़ के किधर जाते हैं, वृंदावन चले जाते हैं। लेकिन प्रभुपाद किधर गए, वृंदावन छोड़ के अमेरिका गए, है ना, मतलब प्रभुपाद के लिए एक तरह से एक नरक में चले गए ऐसा है। तो अमेरिका और पाश्चात्य देश एक नरक के समान ही है, क्योंकि वहाँ पे ना तो कोई संस्कृति है, और कोई व्यक्ति वृंदावन छोड़ के नरक में कौन जाएगा, अमेरिका कौन जाएगा। लेकिन क्यों गए, क्योंकि गुरु की आज्ञा मतलब भगवान श्री कृष्ण की इच्छा, तो इसलिए प्रभुपाद किधर गए, अमेरिका चले गए। और जो व्यक्ति अपने गुरु और कृष्ण की इच्छा का पालन करता है, आज्ञा का पालन करता है ना, तो भले नरक में चला जाए उसमें भक्ति में पतन नहीं होगा। तो इधर भी प्रियव्रत महाराज को, इधर भी परीक्षित महाराज फिर सुखदेव गोस्वामी को बाद में एक और भी एक क्वेश्चन पूछते हैं, और जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में है ना, तो उसको बहुत रुचि आती है गृहस्थी जीवन में, जब उसको सकाम कर्म का फल मिलता जाता है, और वो इंद्रिय तृप्ति के कार्य में इतना आसक्त हो जाता है गृहस्थ व्यक्ति, कि जो गृहस्थ जीवन में इंद्रिय भोग कर रहा है वो कभी भी भक्त नहीं बन सकता, है ना। और फिर इधर हम श्रवण करते हैं कि प्रियव्रत महाराज बाद में एक विष्टा जैसा छोड़ते हैं, वैसा राज्य छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, और फिर से किधर चले गए, फिर से अपने गुरु के चरणों में चले गए, और फिर से उनको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो गई, ऐसा नहीं कि उनको पतन हो गया। तो जब हम हमारे गुरु की आज्ञा का जो पालन करते हैं ना, भरे नरक में जाने दो, हमारा पतन नहीं होगा 100%। और उन्होंने गृहस्थ आश्रम भी स्वीकार किया, पहले नैष्टिक ब्रह्मचारी थे, अगर वो गृहस्थ आश्रम भी उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन पतित हुए क्या, नहीं। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि वो भगवान कृष्ण की और गुरु की इच्छा, कृष्ण की आज्ञा वो पालन किए, इसलिए उनका पतन हुआ नहीं, और फिर से वो वापिस आ गए कृष्ण भक्ति में। तो ये शुद्ध भक्ति का डेफिनेशन क्या है, कि हमें कृष्ण की इच्छा पूर्ण करना चाहिए। तो इधर भी प्रियव्रत महाराज कथा में हम श्रवण करते हैं ना, तो प्रियव्रत महाराज ने भगवान कृष्ण की क्या इच्छा है उसी को पूर्ण किया। इधर अपनी इच्छा, उनकी इच्छा तो ब्रह्मचारी बनने की थी, मुझे नैष्टिक ब्रह्मचारी बनना है, भक्ति करना है, ये उनकी इनकी इनके वो गृहस्थ जीवन में आना नहीं चाहते थे वो, लेकिन भगवान कृष्ण की जब इच्छा है ब्रह्मा ने बोल दिया तो हो गया खत्म, जो गुरु की इच्छा है, कृष्ण की इच्छा है, वो मैं पालन करूंगा। तो फिर उन्होंने शुद्ध भक्ति इधर भी प्रकट होती है, क्योंकि वो कृष्ण की क्या इच्छा है वो उनको उन्होंने पालन किया। फिर रामायण में भी हम भरत जी की जब कथा सुनते हैं ना, तो जब भरत जी अपने मामा के घर थे, तो उनको जब वापिस आए अयोध्या, तो उनको पता चला सब कि राम वनवास चले गए हैं, सब बाकी सब जो भी रामायण की कथा सब उनको पता चला। तब वो वशिष्ठ मुनि और अयोध्या के लाखों अयोध्यावासी उनको पूरा लेके चित्रकूट पर्वत पे गए थे, किस लिए? राम जी को मिलने के लिए, भगवान राम को मिलने के लिए। और उधर एक बहुत बड़ा सभा हो गया उधर। वो सभा का जो गुरुपद था वशिष्ठ मुनि के पास था, तो एक साइड में भरत जी बैठे थे और दूसरे साइड में कौन बैठे थे? प्रभु राम। और इधर भरत जी अपना जो साइड है वो बता रहे थे कि मैं राज्य नहीं लूंगा, बड़े भाई है तो उनको ही राजा होना चाहिए। और उनका जो डिस्कशन था उस सभा का कि भरत बोल रहे कि राम अयोध्या का सिंहासन स्वीकार करना चाहिए, और राम बोल रहे कि मैं धर्म का पालन करूंगा, मेरे पिता की इच्छा है कि मैं वनवास में जाऊं 14 साल, तो मैं वनवास जाना मेरा धर्म है ना, तो मैं क्या करना चाहिए, मुझे जंगल चला जाना चाहिए वन में, और भरत को राज्य संभाल स्वीकारना चाहिए। तो वशिष्ठ मुनि तो कुलगुरु थे अयोध्या के, तो अभी उनको जैसे कि न्यायालय में न्याय करना है ना सिंहासन बैठ के, तो उनको न्याय करना है, तो उनको तो उनका बुद्धि नहीं चल रहा था किसका साइड बराबर है, भरत का साइड बराबर है क्या, राम का साइड बराबर है ना। आजकल तो हम देखते हैं ना भौतिक जगत में, तो कुर्सी के लिए लोग क्या क्या करते हैं, किसी का खून करना तो बहुत कॉमन बात है, लेकिन इधर प्रियव्रत महाराज की कथा में भी हम सुनते हैं कि उनको राज्य की कोई भी इच्छा नहीं थी। और इधर रामायण में भी हम क्या सुनते हैं, भरत जी को कोई भी सिंहासन की ये नहीं थी। तो इधर फाइटिंग चल रहा है किस लिए, मुझे सिंहासन नहीं चाहिए इसलिए। तो फिर दूसरे दिन एक वार्ता आती है कि जनक महाराज आ रहे उधर, तो वशिष्ठ मुनि तो ये इसका फैसला नहीं सुना सके, लेकिन अभी बोल रहे कि जनक जी सबसे सीनियर है, भगवान राम भी उनको पिता समान समझते हैं, तो अभी वो ही फैसला करेंगे कल के सभा में। और फिर जब जनक जी आते हैं और दोनों पार्टी का सुनते हैं बहुत अच्छी तरह से सभा में, तो जनक जी फैसला सुनाते हैं भरत को, मलते बोलते कि तू पहले दंडवत प्रणाम कर श्री राम को, वो तेरे बड़े भाई भी है और खुद भगवान भी है। तो भरत दंडवत प्रणाम करता है और फिर पूछते कि पूछो उनका क्या इच्छा है, तुम बहुत बड़े त्यागी बनने की कोशिश मत करो, पहले दंडवत प्रणाम करो और भगवान राम को दंडवत प्रणाम करके पूछो उनका इच्छा क्या है। तो जब भगवान राम अपना इच्छा बोलते हैं ना, तुम जाओ अयोध्या और 14 साल राज्य कारभार संभालो, तो ये उनका आदेश भी है और भगवान राम की इच्छा भी थी वो। तो एक भरत जी जो है ना, अगर जीवात्मा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उस वक्त, तो उन्होंने क्या किया, फिर पादुका लेके अयोध्या गए, सिंहासन पर पादुका रखे और पूरा 14 साल भगवान राम की इच्छा और उनकी आज्ञा उसका पालन करते रहे। तो इधर भी हम शुद्ध भक्ति की जो डेफिनेशन है ना, उसमें क्या बताया गया है कि हमारे जो खुद की इच्छा है ना, उसको ज़्यादा हम वैल्यू नहीं देना चाहिए, हमें भगवान श्री कृष्ण की इच्छा जो है, जो गुरु परंपरा से हमें प्राप्त होती है हमारे गुरु के द्वारा, तो वही इच्छा हमें पूर्ण करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद के जीवन से भी हम यही सीखते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने गुरु परंपरा के द्वारा जो भगवान कृष्ण की जो इच्छा थी उसका पालन करने के लिए किधर गए, अमेरिका चले गए। जो प्रियव्रत महाराज की कथा है ना, उसमें भी हम श्रवण करते हैं कि प्रियव्रत महाराज ने गुरु परंपरा के द्वारा जो भगवान श्री कृष्ण की इच्छा और आज्ञा है ना, उसी का उन्होंने पालन किया। और जब हम भगवद गीता में अर्जुन की कथा सुनते हैं ना, तो अर्जुन ने भी उनकी खुद की जो इच्छा थी ना, उसको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, गुरु परंपरा के द्वारा जो भगवान श्री कृष्ण की इच्छा है, भगवान श्री कृष्ण की जो आज्ञा है ना, तो उसी को उन्होंने पालन किया। और ऐसा युद्ध किया उन्होंने कि पूछो मत, मतलब इतनी अच्छी सेवा की। और भगवान कृष्ण तो अपने भक्त को सफलता तो देते ही है ना, तो भक्त का जो सेवा जो है ना, अगर उनकी इच्छा के इच्छा कर रहा है तो पालन, तो भगवान कृष्ण उसको क्या करते हैं, बहुत अच्छी सफलता उसको देते हैं। अभी यह हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। अभी चौथा जो पॉइंट था हमारा कि भक्ति में दो प्रकार की विघ्न क्या है, तो एज पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, भक्ति में दो प्रकार के विघ्न आते हैं। हम जब भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं ना, तो अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं भक्ति करते वक्त। लेकिन मेनली दो प्रकार के विघ्न आते हैं, एक है वैष्णव अपराध और दूसरा है कृष्ण की इच्छा और हमारे शेर वैष्णव ने तो गुरु की इच्छा। तो पहला क्या है कि वैष्णव अपराध, तो इसे हमें बच के रहना चाहिए। तो चैतन्य चरितामृत में वैष्णव अपराध को एक बहुत हाथी की उपमा दी है। तो एक बहुत शक्तिशाली जब हाथी है ना, जो बगीचे में चला जाता है और पूरा नासधूस करता है बगीचा का, पेड़ फल फूल सब इस तोड़ देता है और जो बगीचा उद्ध्वस्त कर देता है, तो उसी तरह अगर हम वैष्णव अपराध करते हैं किसी वैष्णव का, तो हमारा भक्ति जो है नष्ट तो नहीं होता, क्योंकि भगवान कृष्ण बोलते हैं कि भक्ति कौते प्रति जानामी न मे भक्त्या प्रनश्यति, तो भक्ति का तो विनाश नहीं होता, लेकिन भक्ति है ना बहुत लंबे समय के लिए उसी जगह पर रुक जाती है, बहुत लंबे समय के लिए उसी जगह पे रुक जाती है कि जब हम वैष्णव अपराध करते हैं। तो सबसे बड़ा विघ्न भक्ति में क्या है, वैष्णव अपराध, तो इससे हमें बचना चाहिए। अभी हम ये चर्चा इधर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भक्ति में प्रगति कर रहे थे कौन, पृथ्वीराज महाराज, गंधमादन पर्वत पे भक्ति कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण का भक्ति कर रहे थे, लेकिन गृहस्थाश्रम स्वीकार किया ना, तो गृहस्थाश्रम तो फिर वो 10 बच्चे भी पैदा हो गए, एक पुत्री हुई, तो थोड़ा ऐसा किसी को लग सकता है कि भक्ति में विघ्न आया। और समझो किसी ब्रह्मचारी को अपने गुरु ने बोल दिया कि तुम गृहस्थाश्रम स्वीकार करो, तो वो तो गृहस्थाश्रम स्वीकार करेगा ही, क्योंकि गुरु की इच्छा है, लेकिन मेरे जैसे दूसरे आदमी को क्या लगेगा, क्या लगेगा, अरे उसका पतन हो गया, ब्रह्मचारी का गृहस्थ हो गया, लेकिन उसको ये पता नहीं कि उनके गुरु की इच्छा का वो पालन कर रहा है, लेकिन दूसरा क्या दूसरे व्यक्ति हमारे जैसे क्या सोचेंगे, अरे उसका पतन हो गया, वो ब्रह्मचारी था लेकिन अभी ग्रस्त बन गए, ऐसा सोच सकते हैं हम, तो हम भी हमारा सोच भी क्या है, गलत है। तो इधर भक्ति में हम चर्चा कर रहे थे कि हमें वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए। और दूसरा विघ्न है कि गुरु भगवान कृष्ण की इच्छा नहीं तो हमारे गुरु की इच्छा, इससे भी हमारी भक्ति थोड़ी देर के लिए रुक सकती है। तो इसका अच्छा दृष्टांत है जय और विजय। तो वैकुंठ में जय और विजय अच्छे सेवा कर रहे थे, उधर द्वारपाल थे, लेकिन भगवान की क्या इच्छा थी तो 3 जन्म उनको लेना पड़ा और उनकी भक्ति कुछ समय के लिए रुक गई। क्यों रुक गई, क्योंकि ये भगवान कृष्ण की खुद की इच्छा थी, इसलिए उनकी रुक गई। तो गुरु की भी इच्छा और कृष्ण की इच्छा से हमारी भक्ति कुछ देर के लिए रुक सकती है, लेकिन उसका कौते प्रति जानामी नमे भक्त्या प्र, और जिसने थोड़ा भी भक्ति में रस पैदा किया है ना, तो भले कुछ साल के लिए कुछ दिन के लिए भक्ति में बाहर जा सकता है, लेकिन रोषो वर्ज रसो पश्य परम दृष्टवा निवर्तन, तो फिर से वापिस आएगा भक्ति में। जैसे कि पृथ्वीराज महाराज इतना सब गृहस्थ आश्रम संभाले फिर भी वापिस आए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, तो इस तरह भक्ति का विनाश कभी नहीं होता। तो सारांश में हमने 4 पॉइंट पे चर्चा किया। पहला हमने ग्रस्त जीवन में क्या दोष है उसके बारे में चर्चा किया। तो ग्रस्त जीवन पूरा इंद्रिय तृप्ति की प्रेरणा से होता है, इंद्रिय तृप्ति की मन में आशा रहता है और इंद्रिय कठोर मेहनत करती है और सकान कर्म मिलता है, इसलिए हम फंसता चला जाता है व्यक्ति, और फिर हमारा आध्यात्मिक मृत्यु होता है, फिर हमें अनेक प्रकार के रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है घर के, फिर हमारा जो स्वरूप है उसकी हमें विस्मृति हो जाती है कि जो हमारा स्वरूप स्थिति है गोलोक धाम में वैकुंठ में, तो वो हम भक्ति करते हैं तो उसका स्मृति होता है ना, अगर गृहस्थ जीवन में हो सकता है कि उसका विस्मृति हो जाए, आध्यात्मिक वृत्ति हो जाए। और मनुष्य जीवन का जो गोल है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त करना, तो वो मानवीय जीवन का एक प्रकार से वो पराभव हो जाता है, शिल प्रपात बोलते हैं। तो ये गृहस्थ जीवन में क्या क्या दोष है इसको ये हमने पहले चर्चा किया। फिर उसके बाद गुरु की आज्ञा का पालन, इसके ऊपर अनेक कथा के द्वारा, पृथ्वीराज महाराज की कथा के द्वारा, प्रभुपाद की कथा के द्वारा, अर्जुन की कथा के द्वारा हमने चर्चा किया। और शुद्ध भक्ति क्या है, अन्याभिलाषिता शून्यम, ये भी इस कथा के द्वारा कैसे प्रकट होती है शुद्ध भक्ति, भरत जी की कथा रामायण से हमने चर्चा की है, पृथ्वीराज महाराज की, अर्जुन की और प्रभुपाद की। तो 4 पॉइंट के ऊपर हमने चर्चा किया ताकि इस कथा को हम श्रवण करेंगे तो हमारा श्रद्धा थोड़ा बढ़े। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का जो श्लोक था ना, इसमें फायदे भी बहुत है, लेकिन हम फायदों की चर्चा नहीं किया है। तो गृहस्थ आश्रम तो फायदों में बताया गया है कि बहुत एक दुर्ग के समान है, एक राजा जैसे अपने किले में बैठ के सभी शस्त्रों को हराता है ना, उसी तरह गृहस्थ आश्रम एक ऐसा आश्रम है, वो भी आश्रम है ना, वो भी पवित्र आश्रम है। तो उस गृहस्थ आश्रम में रह के हम जो भी हमारे विघ्न आते हैं भक्ति में, उसके साथ हम लड़ सकते हैं। तो ये उनको पहले बताना चाहिए। तो कोई भी अभी ब्रह्मचारी नहीं बन सकता ना, जैसे कि इधर 10 पुत्र थे पृथ्वीराज महाराज के, लेकिन ब्रह्मचारी कितने बने? 3 ही बने, बाकी 7 तो गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया ना उन्होंने। और पहली बात तो हमारा जो आध्यात्मिक उन्नति कितना हुआ है, तो एक तो ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और संन्यास। पहले के जमाने में तो ऐसा था ना, तो पहले तो पूरा शिक्षा दीक्षा दी जाती थी ब्रह्मचर्य व्रत कठोरता से पालन करने की, ब्रह्मचर्य व्रत का। और उस शिक्षा में वो पूरा ज्ञान उसको प्राप्त होता था कि गृहस्थ क्या है, ब्रह्मचर्य क्या है, और कैसे हमें ब्रह्मग्रस्थ भी होंगे तो कैसे हमें गृहस्थ जीवन जीना है। तो ये सब पूरा जो है ना अपना देवी वर्णाश्रम सिस्टम, तो उसका ज्ञान हमें देना चाहिए, है ना। हमारे गुरु जो है ना, तो उनसे भी हम इस बारे में चर्चा करके, डिस्कशन करके उनको बताना चाहिए। तो गृहस्थ आश्रम तो एक दुर्ग के समान है ना, तो गृहस्थ आश्रम में पत्नी जो होती है, तो हमें बहुत से हमारे जो भक्ति में विघ्न आने वाले हैं, हमारा पति आने वाला है, उससे हमसे हमें बचाती है। तो भले ही गृहस्थ आश्रम की जो हम प्रवचन में आज का जो शिक्षा ऐसा था इसलिए मैंने दोष लिए, लेकिन उसके बहुत से फायदे भी है ना, वो दुर्ग के समान है एक। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे।